ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई और सिंगापुर की यात्रा के पहले चरण में आज दोपहर बाद ब्रुनेई के बंदर सेरी बेगवन पहुंचे। वहां उनका भव्य स्वागत किया गया। ब्रुनेई के युवराज और प्रधानमंत्री के कार्यालय में वरिष्ठ मंत्री हाजी अल मुहतादे बिल्ला ने उनकी आगवानी की। प्रवासी भारतीयों ने भी उनका जोरदार स्वागत किया। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनेई की यह पहली यात्रा है। श्री मोदी की यात्रा भारत और ब्रुनेई के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ के सिलसिले में हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने बंदर सेरी बेगवन में भारतीय उच्चायोग के नए चांसलरी भवन का उद्घाटन किया। यात्रा पर रवाना होने से पहले श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि ब्रुनेई और सिंगापुर की यात्रा से दोनों देशों और आसियान देशों के साथ भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। दोनों देश भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हिंद प्रशांत विजन में महत्वपूर्ण भागीदार हैं। श्री मोदी ने कहा कि कल सिंगापुर में वे राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम और प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान विशेष रूप से उन्नत विनिर्माण, डिजिटलीकरण और सतत विकास के नए तथा उभरते क्षेत्रों में रणनीतिक भागीदारी को मजबूत करने पर चर्चा की जाएगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और सिंगापुर के द्विपक्षीय संबंधों को अगले स्तर पर ले जाने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री की सिंगापुर यात्रा से पहले डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पिछले दो दशक में बहुत अधिक सशक्त हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सभी शैक्षणिक संस्थानों को बालिकाओं के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना चाहिए। बालिकाएं देश के विकास का अभिन्न अंग हैं। महाराष्ट्र के पुणे में सिम्बायोसिस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि स्वर्ण पदक विजेताओं में 11 में से 8 महिलाएं होना इसे दर्शाता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सड़कों पर नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। नई दिल्ली में टनलिंग इंडिया सम्मेलन में श्री गडकरी ने बारिश, भूस्खलन और बाढ़ के मद्देनजर सड़कों के प्रभावी स्थायी समाधान की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 9 माओवादी मारे गए। ये मुठभेड़ बस्तर डिवीजन के दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में हुई। सुरक्षा बलों को इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसके बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और जिला रिजर्व गार्ड के संयुक्त दल को एंड्री गांव के पास तलाशी अभियान के लिए भेजा गया। घटनास्थल से कई हथियार बरामद किए गए। झारखंड में भाजपा ने उत्पाद शुल्क कांस्टेबल भर्ती के दौरान गर्मी के कारण मारे गए 12 अभ्यर्थियों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राज्य विधानसभा चुनाव के भाजपा के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि पार्टी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से इन उम्मीदवारों की मौत की जांच करने का आग्रह करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को मारे गए प्रत्येक अभ्यर्थी के परिजन को 50-50 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देनी चाहिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। इस चरण में 18 सितंबर को मतदान होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल रामबन और अनंतनाग जिलों में प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मुंबई में इस वर्ष प्लेसमेंट पूरा हो गया है और औसत वार्षिक पैकेज 23.5 लाख रुपए का रहा। पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 7.7% की वृद्धि हुई है। सबसे कम 4 लाख रुपए प्रतिवर्ष का पैकेज ऑफर दिया गया। पेरिस पैरालंपिक खेलों के छठे दिन निशानेबाजी में अवनी लेखरा 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 की श्रेणी के फाइनल में पहुंच गई हैं। फाइनल भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे होगा। रिकर्व तीरंदाजी में पूजा ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। उनका सामना रात 9:20 पर चीन की वो चुनियन से होगा। शॉटपुट में भाग्यश्री जाधव 5वें स्थान पर रहीं। ऊंची कूद के T63 फाइनल में मरियप्पन थंगावेलू, शैलेश कुमार और शरद कुमार चुनौती पेश करेंगे। 400 मीटर T20 दौड़ के फाइनल में दीप्ति जीवन जी खेलेंगी। पदक तालिका में भारत 3 स्वर्ण सहित 15 पदक लेकर 15वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।